आचार्य भगवान का जो समय सार है उसकी हम 19 नंबर की गाथा देख रहे थे, और उस 19 नंबर की गाथा के बाद जो अमृत चंद्राचार्य ने 21 नंबर का जो कलश लिखा है उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इस स्वाध्याय में तो यही हमें प्रेरणा दी जा रही है। तो कहते हैं कि हमें भेद विज्ञान करना चाहिए, और वह भेद विज्ञान यानी क्या कहते हैं कि अपना जो स्वभाव है, जो मूल त्रिकाली स्वभाव, वह राग से रहित, राग से खाली है। राग जिसमें है नहीं, जहाँ ज्ञान है वहाँ राग नहीं है, और जहाँ राग है वहाँ ज्ञान नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? देखो, हम लौकिक में भी ऐसा बोलते हैं कि मान लीजिए अंकुश भाई, रास्ते में बस में आते आते आपके किसी से झगड़ा हुआ, तब वहां मैं भूल चूक से वहां मिला आपको। मैंने कहा, भाई क्या झगड़ा कर रहे हो? ऐसा झगड़ा नहीं करते। देखो साहब, अभी मैं गुस्से में हूं, आप चुपचाप बाजू खड़े रहना। फिर गुस्से में मेरे आपसे कोई इंसल्ट होगा तो मैं नहीं जानता, ऐसा कहा हुआ या ऐसी बात होती है कि नहीं? अभी मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं, यानी मैं गुस्से में हूँ। यानी जहाँ राग है, क्रोध है, यहाँ ले लो क्रोध को, उसमें ज्ञान नहीं होता है, ख्याल में? और जहाँ ज्ञान है उसमें राग नहीं है, दोनों का अस्तित्व जुदा जुदा है, ख्याल में? इंदुबेन, आपको चाहिए थी ना ये बात, इसलिए क्या मालूम वही बात मेरे दिमाग में आ गई। तो यहां तो कह रहे हैं कि जो आत्मा, जो त्रिकाली न्यायिक स्वभावी आत्मा है, वह राग से रहित है, क्योंकि वीतराग यह मेरा स्वभाव है। और जो स्वभाव होता है वो तीनों काल मौजूद होता है, और ये जो राग है वह स्वभाव न होते हुए विभाव भाव मेरे में पैदा हो रहा है, और उसका यह फल है कि मेरे में क्रोधमान मायालोभ आदि जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं वह मेरा स्वभाव नहीं है, वह मेरा विभाव है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं? देखो कि ये जो कह रहे हैं कि ये जो ये हमने कल देखा था ना, सेकंड फर्स्ट पैराग्राफ, भेद विज्ञान जेनु मूल उत्पत्ति नु कारण, जो उसकी थर्ड लाइन, राग अने आत्मा ना भिन्न भिन्न लक्षणों जानी, यानी यहाँ समझाया है कि राग का लक्षण जुदा है और ज्ञान का लक्षण जुदा है, इन दोनों को हमें भिन्न भिन्न जानना चाहिए। तो ये ज्ञान कहो या आत्मा कहो, एक ही बात है, आत्मा का लक्षण और राग का लक्षण जुदा है। राग जो है वह तो क्षणिक है, क्योंकि राग यह पर्याय है, और पर्याय की विद्यमानता एक समय पूर्ति रहती है, तो वो है क्षणिक। और जो आत्मा, जो मैं हूँ, मैं तो हूँ त्रिकाल, तीनों काल मेरा अस्तित्व है। देखो अभी आपको यहाँ आने का राग हुआ, जो सुबह 5 बजे नहीं था, 10 बजे 12 बजे जब खाना खा रहे थे जब नहीं था, यानी ये जो आने का शास्त्र सुनने का राग भी क्षणिक है, हर समय है। इस समय वही वैसा का हो रहा है, हमको लगता है 1 घंटा हमने राग किया, शास्त्र सुनने का राग किया, लेकिन राग यह पर्याय है और वह एक समय पूर्ति है, तो उसे कहा जाता है वह है क्षणिक और आत्मा है त्रिकाल। अब कहते हैं राग है दुख स्वरूप और आत्मा है सुख स्वरूप। वर्तमान में राग दुख स्वरूप है और भविष्य में भी दुख देने वाला है, और आत्मा वर्तमान में सुख स्वरूप है और भविष्य में भी सुख देने वाला है। इस तरह अनेक प्रकार के दोनों में अंतर है। इन लक्षणों को, इन भेदों को जानकर हमें राग का त्याग करना है और आत्मा का अवलंबन लेना है। इसलिए कह रहे हैं कि राग ने आत्मा ना भिन्न भिन्न लक्षणों जानी, राग नु लक्ष्य छोड़ी प्रज्ञा छिनी एटले ज्ञानी परिणति वड़े, आत्मा ने रागादि बंधने छेदी नाखवा जुदा पाड़वा। यानी यहां मूल बात तो क्या है कि हमें अपने स्वभाव की पहचान कराकर, उसका ज्ञान देकर, उसी की श्रद्धा करने के लिए प्रेरित करके, उसी में एकाग्रता करने की प्रेरणा कर रहे हैं। अब अगला पैराग्राफ जो है कहते हैं भाई आ तो धीरा ना काम छे, यानी जिसमें धैर्य है धीरता है वही जीव ये बात करेगा। नहीं तो हमारी तो ऐसी आदत हो गई है कि हम तो ध्यान करने बैठते हैं और अभी मुझे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, अभी मुझे सम्यक, हमारा लक्ष्य तो पर्याय पर ही चलता है कि सम्यक दर्शन रूपी पर्याय प्रकट हुई कि नहीं। वह तो कैसा बचपना है कि जब हम स्कूल में जाते थे तब हमें तो स्कूल के टीचर, मतलब मास्टर, टीचर तो आजकल आने लगी है, पहले तो मास्टर ही थे, वो हमें ऐसे बीज देते थे और घर के आंगन में आप बीज बोना और उसका झाड़ होगा तो पौधा होगा तो आप ले आना। तो अभी हमने 5 मिनट पहले बीज डाला हो, उसके ऊपर पानी मतलब खड्डा करके उसके अंदर डाल दिया, ऊपर बुझा दिया उसको, मिट्टी डाल के पानी वानी डाल दिया, और फिर यहाँ वहाँ जरा खेल के आधे घंटे में जाके खोद के देखा आया नहीं, अच्छा चलो दबाओ, फिर हर 2 घंटे 4 घंटे में वो पौधा आया कि नहीं देखने लगेंगे, तो पौधा आएगा कि नहीं। वैसे बार बार जब हमारी दृष्टि पर्याय पर जाती है, बार बार हमारी दृष्टि जब पर्याय पर जाती है, यहां तो भगवान तुझे तो कहने में आ रहा है कि तू अपने त्रिकाली स्वभाव पर दृष्टि केंद्रित कर, तेरी मान्यता में तेरे ज्ञान में अपना स्वभाव ही आना चाहिए जो त्रिकालिक है। तो तू तो बार बार मुझे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, मुझे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, तू पर्याय पर अपनी नजर ले जाएगा तो तुझे आत्मानुभूति कभी नहीं होगी। इसलिए तो समझे कि भाई आ तो धीराना काम छे, यानी जिसे धीर है। क्या देखो मैं आपको बताता हूं, न्यालचंद जी ने बताया था, इस पर्याय को मेरे तरफ देखना हो तो देखे, मैं तो त्रिकाली ज्ञान स्वरूप हूं, बस इतना निश्चय नय का उनके मतलब जोर था, पर्याय रूप मैं हूं ही नहीं, ऐसी उनकी मान्यता थी, ख्याल में आए। लेकिन हम तो पर्याय किधर जा रहे, हाँ उसको देख रहे, नहीं नहीं इसको देख रहे, अच्छा पाप में लग रही, हाँ पुण्य में जा रहे, हाँ बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, यानी हमारी पूरी जिंदगी पर्याय पर ही टिकी हुई है। क्या कह रहे, देखो भाई आ तो धीराना काम छे, पहला विकल्प द्वारा लक्ष्मा एटले प्रतीतिमा तो ले, यानी पहले क्या कहते विकल्प द्वारा, पहले तो विकल्पात्मक ही भूमिका होगी, अन्य अन्य प्रकार के विचार ही होंगे, तो उसमें क्या करना है तुझे कि विकल्प पहला यानी प्रथम में प्रथम क्या करना है, तो विकल्प के द्वारा हमें प्रतीति में यानी जिसको हम कहेंगे मान्यता में यानी श्रद्धा में तो लेना चाहिए क्या कि अंतरनो अनुभव वेद विज्ञान ना कारणे थाय छे। जब तक हमें वेद विज्ञान नहीं होता, पर से मैं जुदा पदार्थ हूं ऐसा जब तक हमें यह भासित नहीं होता, तब तक यह कार्य होने वाला ही नहीं। ऐसी श्रद्धा पहले पैदा कर। अश्विन भाई देखो, क्या फिर से देखना के पहला विकल्प द्वारा लक्ष्म एटले प्रतीतिमा तो ले के अंतरनो अनुभव वेद विज्ञान ना कारणे थाय छे, पर थी भिन्न पड़वाना कारणे थाय छे। यानी पर यानी जो मैं नहीं हूं, मेरे से जो जुदे है, इनसे जब तक मैं भिन्न नहीं, मतलब भिन्न हूं ऐसा जब तक उसकी खातरी नहीं होती है। यानी ये मेरे में नहीं है, ये मेरे नहीं है, ऐसी जब तक उसे खातरी नहीं होती है तो कहते हैं तुझे अंतर यानी अपने स्वभाव का अनुभव होगा नहीं। कहते कि पर के जेना थी जुदू पड़वू छे एना थी अनुभूति थाय। यानी पर यानी इसको कहा, किसको पर लिया इधर? हाँ बोलो, राग को। राग जो है ये मेरा स्वभाव नहीं, वो विभाव है। हाँ, वो कहता है वो पर है मेरे में, वो मेरे खाते में, मेरे साइड में वो नहीं आता है, दुश्मन के साइड में जाता है। तो क्या कहते है? पर कि जेना थी जुदू पड़वू छे, यानी राग के जिससे हमें जुदा पड़ना है, जुदा होना है, एना थी अनुभूति थाय। यानी क्या उससे जिससे हमें जुदा होना है, क्या उसी के कारण हमें अनुभूति हो सकती है? क्योंकि नज था है, होएगी नहीं। रागादि जे क्रिया भले ते पंच महाव्रतादि होए, एनाती तो जुदू पड़वू छे। देखो ऐसा है कि जो मुनिराज होते हैं वह तो जब अपने स्वरूप में एकाग्र है तो उनका तो सातवां गुणस्थान चलता है, और जब वह शुद्धोपयोग में नहीं रहते हैं, अपने स्वभाव के अनुभव में नहीं रहते हैं, तब उससे जब वह बाहर निकलते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं, उसमें भ्रष्ट हो जाते हैं छोटू से, तो वह शुभोपयोग में आते हैं। और शुभोपयोग में आते हुए भी उनको तो ऐसा लगता है कि हम कहाँ ये आए, ये कोई हमारा स्वरूप नहीं है। वो बेनश्री बहन ने बताया ना, हमें आ क्या परदेश में आवीने पड़िया, आ तो हमारो स्वदेश नहीं। स्वदेश यानी मेरा स्वरूप तो ये नहीं है, ये तो कोई हम भलती जगह आके पड़े हैं। जैसा हम यहां से दुबई जाए तो वहां एक भी व्यक्ति अपने पहचान का नहीं मिलता है, तो अपने को क्या लगता है ये कहां हम आके पड़े? बाहर में तो इतनी गर्मी है, और वही हम जाके एसी में बैठे तो वैसे यहां अंतरंग में जाके बैठे तो एसी जैसा है, और बाहर में आए तो वहां का जो क्या बोलते हैं गर्मी है, वहां की जो रेत है गर्म है, वैसा बाहर इनके जो शुभ परिणाम आते हैं पंच महाव्रत पालन करने के जो परिणाम है वे भी उन्हें दुखदायक लगते हैं। ख्याल में आए तो क्या कहते हैं? देखो रागादि जे क्रिया भले ते पंच महाव्रतादि होय एनाथी तो जुदू पड़वू छे। हवे जेनाथी जुदू पड़वू छे ए रागादि अहीं साधन केम थाय न थाय। यानी हमें तो अपने स्वरूप का अनुभव करना है, तो उसके लिए राग यानी शुभ राग तो हमें कुछ तो हेल्प करेंगे कि नहीं, कुछ तो भी मदद करेंगे कि नहीं, जरा उठा के हमको ऊपर तो चढ़ाएंगे कि नहीं? कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि जिससे तुझे जुदा होना है, कल लिफ्ट की बात बताई थी ना, हमें लिफ्ट भले ऊपर ले जाए लेकिन लिफ्ट को लेके हम नहीं जा सकते, लिफ्ट से जुदा होकर ही हमें अंदर जाना पड़ेगा। वैसे शुभ राग से हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप समझ में आएगा, लेकिन उस सच्चे देवगुरु शास्त्र की हम आरती पूजा करते बैठेंगे तो अपने स्वरूप में कब चले जाएंगे? ख्याल में आया? तो जब हमें अपना अनुभव करना है तब तो हमें बाकी सब चीजों को छोड़कर अपने स्वरूप का जो स्वभाव है उसको जानना पड़ेगा, और यही मैं हूं ऐसी श्रद्धा करनी पड़ेगी, और उसी में हम जानते रहेंगे यानी उसी में एकाग्र हो जाएंगे तो हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की प्राप्ति होगी, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग है नहीं। यहाँ क्या बताते हैं कि हाँ जी बोल रहे,
देखो यहाँ राग से जुदू पड़ना है ने, राग होते हुए को अपने से भिन्न जानना है। हाँ। नहीं तो ऐसा मत समझना कि राग को छोड़ देना है। राग को छोड़ देना है, हम छोड़ सकते हैं, ला सकते हैं, ऐसी मान्यता तो पड़ी है। यानी अभी तक तो भक्ति कर रहे तो अभी अभी भक्ति नहीं करना क्या कल से? ऐसा प्रश्न होगा ना आपके मन में कि भक्ति भक्ति से कुछ कार्य नहीं होगा तो कल से हम देवशास्त्र गुरु की भक्ति छोड़ देंगे? उसकी बात नहीं है। आते हुए शुभ राग को अपने से भिन्न जानना है, ये बात चल रही है यहाँ पर। नहीं तो भक्ति भी छोड़ देंगे और अभी यहाँ कोई ठिकाना नहीं है तो कहाँ अशुभ में जाके नरक निगोद में चले जाएंगे, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। क्योंकि राग को अपने से भिन्न पहचानना, ये बात पर यहाँ वजन है। मुनियों के भी पंच महाव्रत के परिणाम है, अभी उससे जुदा पड़ेंगे यानी क्या करेंगे? पंच महाव्रत छोड़ देंगे तो छठे से भी नीचे चले जाएंगे, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। वो मेरे स्वभाव में नहीं है, वो आने योग्य उस भूमिका में आते हैं, आते हुए को अपने से भिन्न पहचानना है। हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो पहले हम घर के बाहर निकालते हैं फिर अपने कुटुंब के नहीं, ऐसा कहते हैं कि वो घर में होते हुए भी हम जानते हैं ये तो अपने कुटुंब के नहीं है, ये तो जुदे है, गेस्ट है, अपने से भिन्न है। अपना कोई इनकम उनके नाम पर नहीं कर देते हम, ख्याल है ना? ऐसे राग आता है तो उसको हमको भिन्न पहचानना, ये बात यहाँ ख्याल में रखना। जब जब शुभ भाव का या राग से धर्म होने का निषेध हो रहा है, राग तो होगा, यदि राग होगा ही नहीं तो वितराग हो जाएगी उसी समय। हमको दर्पण को जानना है तो उसमें से सब रिफ्लेक्शंस निकाल देंगे पहले, ऐसा है? ऐसा नहीं? हाँ, वो तो उसका स्वभाव है ना, तो हमारा भी जानने का स्वभाव है। राग आ रहा है तो राग को भी जानना चल रहा है, फिर भी उससे हम भिन्न है ऐसा पहचानना है, ये बात ख्याल में रखना। जब जब ये राग की या उसको छोड़ने की बात, त्याग करो यानी वो ज्ञान में उसका उपयोग मत करो, उसका लक्ष्य मत करो, ये बात यहाँ चल रही
है। ये अपन थर्ड फोर्थ लाइन पे आए हैं। हवे जेनाथी जुदू पड़वू छे ए रागादि आई साधन केम थाय न थाय, वस्तुनी स्थिति ज आवी छे भाई, घणु गंभीर तत्व भर्यू छे। वळी केटलाक एम कहे छे के रागनी मंदता रूप शुभोपयोग छेल्लो अनुभव, छेल्लो एटले अनुभव पहला तो होय छे ने, भले एनाथी जुदू पण शुभोपयोग एटलू तो साधन थयू ने, अशुभ उपयोग होय ने भेद ज्ञान थाय एम बनतू नथी। माटे अशुभ उपयोग साधन न थाय पण शुभोपयोग तो साधन खरु ने। ये तो आपको कहां तक समझेगा मैं नहीं समझता हूं, लेकिन अन्य लोगों को बताऊंगा। जब कोई जीव अपने स्वरूप का अनुभव करने के लिए, जो अभी हमने पंच लब्धि जो पढ़ी थी उसमें से प्राग्ञ लब्धि के बाद करण लब्धि में चढ़ जाता है, तब करण लब्धि में तो उसके तो अपने आत्मा के बारे में ही विकल्पात्मक चिंतन चलता है और वह तो शुभोपयोग ही है। इसलिए यहाँ कह रहे कि जब आत्मानुभूति होती है उसके पहले तो कम से कम शुभोपयोग है ना, भले आप अशुभोपयोग के मत कहो लेकिन शुभोपयोग तो वहां तो है ना। तो वो क्या कह रहे, देखो फिर से मैं पढ़ता हूँ। वही केटला गेम कहे, नीचे से छठी सातवीं लाइन होगी। रागनी मंदता रूप शुभोपयोग छेलो एटले अनुभव पहला तो होय छे ने, भले एनाथी जुदू पण शुभोपयोग एटलू तो साधन थयुं ने, यानी वहां तक तो है तो वो तो साधन होगा क्या नहीं। अशुभ उपयोग होय ने भेद ज्ञान था एम बनतु नथी। हमने तो देखा है कि शुद्धोपयोग होने के पहले शुभोपयोग होता ही है और शुद्धोपयोग के बाद जब शुद्धोपयोग से छूट जाता है तब भी शुभोपयोग होता है। डायरेक्ट शुद्धोपयोग में से कोई अशुद्ध उपयोग में नहीं जाता है, अशुभ उपयोग में नहीं जाता है, और अशुभोपयोग में से डायरेक्ट शुद्धोपयोग में नहीं जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं तो अशुभोपयोग होय ने भेद ज्ञान थाय एम बनतु नथी, माटे अशुभोपयोग साधन न थाय पण शुभोपयोग तो साधन छे खरू ने। तो अभी उसका उत्तर देते, छेल्लो जे शुभोपयोग होय तेनाती तो जुदू पड़वानू छे, तो जुदा पाड़वामां शुभोपयोगे शू मदद करी। यानी जिससे हमें जुदा होना है तो हमको कौन सी मदद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, काई नहीं। ए शुभरागना काले राग थी जे भेद ज्ञान ते अनुभूति नु कारण छे। यानी जब वह शुभोपयोग चल रहा है उसी समय वह मेरे से जुदा है, वह मेरा स्वरूप नहीं है, ये बात वहां होनी चाहिए। अभी बहुत अभी बताया ना उज्ज्वला ने आपको बताया कि हम बहुत बार ऐसा समझते हैं कि शुभोपयोग कुछ कार्यकारी नहीं, शुभोपयोग कुछ कार्यकारी नहीं, तो हम क्या समझते हैं शुभ को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वैसा तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जो भूतकाल में निकल गए शुभोपयोग उसको क्या हम बदलिंग करेंगे, हाँ, और जो भविष्य में अभी आए नहीं उनमें क्या तफावत करेंगे, और जो भाई वर्तमान में मौजूद है वो जो है जिंदा उसको एक समय में निकल जाने वाला है, उसको तुम काहे निकालने वाले हो, कैसे निकालेंगे। लेकिन जिस समय वह शुभ राग है उस समय वह मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा जानना, यही उससे जुदा पड़ना है। ख्याल में है ना, तो क्या कहते देखो, ए शुभ राग ना काले राग थी जे भेद ज्ञान, यानी उससे मैं जुदा हूं ऐसा जो ज्ञान हो रहा है वह ते अनुभूति नु कारण था, यानी भेद ज्ञान यही अनुभूति का कारण है। उस भेद ज्ञान में स्व तो एक रहा, मैं और पर में सारा आ गया, यहां तो सिर्फ शुभ भाव की बात ली, लेकिन शुभ भाव के पहले बहुत सारे हैं, शुभ है अशुभ है, शरीर है मन है वाणी है द्रव्य कर्म है, ये सारे जो बात है सब अलग 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 अलग। शू कहे छे के ते अनुभूति नु कारण थाई छे, पन राग ने लईने ते अनुभूति थाई छे एम नथी, यानी राग के कारण आत्मानुभूति होती हो ऐसी बात है नहीं। प्रश्न, भेद विज्ञान मूलाम एम लख्यू छे ने, भेद विज्ञान जेनु मूल कारण छे, बीजा शुभोपयोग उत्तर कारण, एटले एम के बे कारण थी कार्य थाय छे। अष्टसहस्त्री मां तत्वार सूत्र ने टीका मां बे कारण आवे छे ने, अभी आगे मत पढ़ना कोई, ये बे कारण कौन से होने चाहिए, दो कारण जो बताए हैं मिली भाई आप जानते हैं, आप बताएंगे नहीं, हाँ बोल। यहां देखो क्या लिखा है, हाँ वेद विज्ञान कर, ये नहीं प्रश्न है ना ऊपर ही देखो, वेद विज्ञान जेनु मूल कारण छे एटले एम के बे कारण थी कार्य थाय छे, तो ये बे कारण थी कार्य थाय छे, दो कारण कौन से बताए होंगे प्रेरणा भाई आप जानती है, दो कारण बता, हाँ बहुत अच्छा। देखो आपको हम प्रश्न पूछते हैं तो आप ही हमको प्रश्न पूछेंगे तो कैसा चलेगा, क्यों सब निमित्त उपादान करके हमें आप प्रश्न नहीं पूछना, आपको बोलना है कि निमित्त और उपादान क्या हो गया, तो बताएंगे अभी देखो, ए तो बीजू हो एनु ज्ञान करे विषय, बाकी आई तो राग थी भेद ज्ञान करवू ए एकज अनुभूति नहीं उत्पत्ति नु कारण छे एम कहूं छे। अभी उन्होंने दो कारण की बात बताई नहीं है, लेकिन हमेशा जब जब कार्य होता है तब तब तक दो कारण तो शास्त्र में बताए गए हैं। एक कारण तो वो उस समय जो उस कार्य रूप करने की जो योग्यता है उसको कहेंगे उपादान कारण, उसको कहेंगे उपादान कारण, और उस उपादान कारण के वक्त जो कार्य हो रहा है उसमें जो कोई निमित्त होगा उसको निमित्त कारण कहने में आता है। इस अपेक्षा से दो कारण कहे गए हैं, कार्य तो होता है उपादान से, कथन होता है निमित्त से। ख्याल में आया, ये ऐसी बात है। तो कहते हैं उन्होंने वो बात उठाई नहीं, आगे बढ़ाएंगे शायद उत्तर, ए तो बीजू हो बीजू यानी बीजू कारण हो एनु ज्ञान करावियू छे, क्योंकि यहां तो ज्ञान में तो सब बातें बताएंगे, बाकी आई तो राग थी भेद ज्ञान करवू ए एक छे अनुभूति नु उत्पत्ति नु कारण छे एम कहू छे, यानी अनुभूति जो है अपने को आत्मानुभूति करनी है तो उसके उत्पत्ति के लिए मूल कारण क्या है, तो भेद विज्ञान, इतनी बात बतानी है। छेल्लो शुभराग हतो माटे एनाथी कांई मदद थई एम नथी। हवे कहे छे कि जे पुरुषो कोई पण प्रकारे पोताथी अथवा परना उपदेश थी अंतस स्वभावना लक्ष्य स्वभाव तरफना पुरुषार्थ थी रागती भेद करी भेद ज्ञान वड़े अविचल अनुभूति ने पामे छे, तेज पुरुषो दर्पण नी जेम પોતામાં પ્રતિબિંબિત થયેલા અનંત ભાવોના સ્વભાવથી નિરંતર વિકાર રહિત હોય છે। જિનોને અપને સ્વભાવ કા અનુભવ કિયા હૈ ઉનકે જ્ઞાન રૂપી દર્પણ મે તો અનેક ભાવ ઝલકતે હોંગે, ફિર ભી અન્ય ભાવોં કો ગૌણ કરકે અપને સ્વભાવ ભાવોં કો હી વહ વિકાર રહિત હોકર જાનતે હૈ। બસ શું કહે છે કે અનુભૂતિની એટલે જ્ઞાનની જે પર્યાય થઈ એ પર્યાયમાં પોતામાં પ્રતિબિંબિત થયેલા એ અનંત ભાવોના એટલા જ્ઞેયોના સ્વભાવ જાણવામાં આવ્યા। અભી એ થોડી ભાષા આપકે લીએ થોડી કમ અલગ લગેગી, લેકિન યહાં ઇતના હી બતાતે હૈ કે વો જ્ઞાન જો હૈ વો જ્ઞાન મેં ક્યાં નહીં પ્રતિફલિત હોગા, અનેક બાતેં ઉનમેં જ્ઞાન મેં આને વાલી હૈ। તો ક્યાં કહે રહે દેખો, અનુભૂતિની એટલે જ્ઞાનની જે પર્યાય થઈ એ પર્યાયમાં પોતામાં પ્રતિબિંબિત થયેલા ક્યાં એ જાણવામાં આવ્યા। શું થયા કે અનંત ભાવોના એ અનંત ભાવ ઉનકે જ્ઞાનમાં આવે। તો શરીરની પર્યાય, વાણીની પર્યાય, રાગની પર્યાય એમ બધા અનંત ભાવો જ્ઞાનની પર્યાયમાં પોતપોતાના કારણે જાણવામાં આવ્યા। યાને વો જૂનમાં પ્રમેયત્વ નામ કા ગુણ હૈ, ઉસ પ્રમેયત્વ ગુણ કે કારણ વો નિમિત્ત સે વે ઇનસ્કે જ્ઞાન મેં જાણને મેં આએ। એ જ્ઞેયનું જ્ઞાન થયું પણ જ્ઞેયો સંબંધી વિકાર થયો એમ નથી। ક્યાં કહે રહે હૈ કે વો જ્ઞેય જો હૈ વો જ્ઞેય કા જ્ઞાન હુઆ, પરંતુ ક્યાં કહેતે હૈ જ્ઞેય સંબંધી વિકાર જો હુઆ હૈ વો જ્ઞાન કે કારણ સે નહીં હુઆ હૈ। વિકાર જો હુઆ વો તો રાગ મતલબ ચારિત્ર ગુણ કી વિભાવ પર્યાય જો હોઈ હૈ તો એના કારણે થયું છે। એ જ્ઞેયોનું જ્ઞાન નિર્વિકારી છે। જ્ઞાનમાં જે જ્ઞેયોના આકાર પ્રતિભાસે છે તેમનાથી ભેદ વિજ્ઞાની પુરુષો રાગ, હાજી અભી વહા ઉનકે જ્ઞાન મેં તો આપણે સ્વભાવ કોઈ દેખ રહે ના, તો અન્ય બાતે ઉનકો ઉસ સમય જ્ઞાન મેં નહીં આ રહી, ઇતની બાત બતા રહે। લિખા ને દેખો દેખો ફિર સે દેખો, શરીરની પર્યાય, વાણીની પર્યાય, રાગની પર્યાય એમ બધા અનંત ભાવો જ્ઞાનની પર્યાયમાં પોતપોતાના કારણે સ્વભાવમાં આવ્યા। યહાં તક બાત ખ્યાલમાં આવી? એ જ્ઞેયનું જ્ઞાન થયું પણ જ્ઞેયો સંબંધી વિકાર થયો એમ નથી। યાને વો જો અભી જ્ઞાન સ્વ કો જાન રહા હૈ તો જાનને મેં સ્વ ભી આ રહે અન્ય વિકાર ભી આ રહે, તો વો ઉસમેં સે સિર્ફ સ્વ કો જાનેગા તબ ઉસ સમય ઉસકે સંબંધ મેં જો વિકાર હૈ વો ઉસકે જ્ઞાન મેં નહીં આયેંગે। એ જ્ઞેયનું જ્ઞાન નિર્વિકારી છે।
અભી રાગ કા જ્ઞાન હુઆ, ક્રોધ કા જ્ઞાન હુઆ, તો જ્ઞાન ક્રોધમય હો ગયા ક્યાં નહીં હુઆ? જ્ઞાન તો જ્ઞાન રહા, જ્ઞાન તો નિર્વિકાર રહા। જૈસે દર્પણ મેં કોઈ ભી ગંદી ચીજ ભી પ્રતિબિંબિત હો જાય તો હમ દર્પણ કો પહોંચતે ના પહેલે, ક્યા કરતે? નહીં પહોંચતે, ક્યોંકિ દર્પણ તો અસ્વચ્છ હુઆ હી નહીં હૈ, ઉસને અસ્વચ્છતા પ્રતિબિંબિત કર દી હૈ। વૈસે યહાં જ્ઞાન મેં રાગ જાનને મેં આયા તો જ્ઞાન કુછ અશુદ્ધ હુઆ હી નહીં હૈ, ખ્યાલ હૈ ને? અભી હમ તો કહેતે નહીં નહીં જ્ઞાન તો જાનતા હૈ, પરગેય કો જાનતા હૈ, શરીર કો જાનતા હૈ, અભી શરીર મેં કુછ ગંદગી લગી તો હમ કૈસા મહેસૂસ કરતે હૈ? અરે હમ ગંદે હો ગયે, ઉસકા અર્થ ક્યા હુઆ? હમને અપને કો જ્ઞાન માના કે શરીર માના, ખ્યાલ હૈ? ये बात यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञान कभी विकारी हुआ ही नहीं है, ज्ञान कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है, परंतु जब तक ज्ञान और अन्य पदार्थों में एकत्व पना चल रहा है, यह मैं हूँ, ये मेरा है वगैरह, तब तक उसने वो ज्ञान को ही विकारी मान लिया है। यह ज्ञान का स्वरूप पहले समझा रहे हैं।
इसलिए यहाँ लिखा है ना, ए ज्ञेयनु ज्ञान निर्विकारी छे। જ્ઞાનમાં જે જ્ઞેયોના આકાર પ્રતિભાસે છે તેમનાથી ભેદ વિજ્ઞાની પુરુષો રાગાદી વિકારને પ્રાપ્ત થતા નથી। યાને જો જ્ઞાની જીવ હૈ વો રાગ હોતે હુએ ભી ઉનસે વહ વિકારી પરિણમિત નહીં હોતે હૈ। એ જ્ઞાનની પર્યાયનું પોતાનું સહજ સામર્થ્ય છે, તેથી સ્વને અને પરને પોતાના અસ્તિત્વમાં જાણે, તેથી એમાં રાગને જાણે, શરીરને જાણે માટે એ પરજ્ઞેયના કારણે અહીં જ્ઞાનમાં વિકાર થાય એમ નથી. અનંત જ્ઞેયોના સ્વભાવને જાણે છતાં નિરંતર તેવો વિકાર રહિત છે. ધ્યાન મેં વો વિકાર પ્રવેશ હી નહીં કિયા ઉન્હોને, ઉસમે એકમેક હુએ નહીં હૈ તો ધ્યાન તો નિર્વિકારી હી હૈ. અબ યહાં તક તો હમને દેખ લિયા, અભી યહાં ગાથા નંબર 20, 21 ઓર 22 તીનો સાથ મેં હમ પઢેંગે. દેખો યે તીનો કા ટોપિક એક દૂસરે સે લગતા હુઆ હૈ. યહાં તો શિષ્ય પ્રશ્ન પૂછતા હૈ કે હવે શિષ્ય પ્રશ્ન પૂછે છે ક્યા કે અપ્રતિબુદ્ધ કઈ રીતે ઓળખી શકાય એનું ચિહ્ન બતાવો. યાને અપ્રતિબુદ્ધ યાને અજ્ઞાની, યાને જિસને આત્મા કા અનુભવ નહીં કિયા હૈ, એસે જીવ કો હમે પહેચાનના હૈ તો કિસ તરહ પહેચાને.
દેખો 19 ગાથા મેં ક્યા પૂછા થા માલુમ હૈ? હા બોલો. હા હા
જોર સે.
કબ તક રહેગા? યે અપ્રતિબુદ્ધ કા અર્થ હોતા હૈ અજ્ઞાની. તો યે જીવ અજ્ઞાની કબ તક રહેગા? તો કહેતે જબ તક વો એસા ભેદ વિજ્ઞાન નહીં કરેગા તબ તક વો અજ્ઞાની હૈ. અબ યહાં ક્યા પૂછ રહે હૈ? હા, ઉસકો કૈસે પહેચાનના? હમકો એસા નહીં કભી પ્રશ્ન પૂછતા હૈ કે હમ અપને કો કૈસે પહેચાને. હમે પ્રશ્ન ક્યા પડતા હૈ? અરે સામને વાળા અજ્ઞાની હૈ કે જ્ઞાની હૈ, ઇસકો કૈસે પહેચાનના? અભી તો યહાં અજ્ઞાની કી પહેચાન કરાયંગે, આગે કર્તા કર્માધિકાર મેં જ્ઞાની કી પહેચાન
કરાયંગે.
વો આયેગી આગે, ક્રમ સે આયેગી, ખ્યાલ હૈ ના?
ક્યોંકિ યહાં દોનો બાતે બતાઈ દે ને. દેખો સમય સાર મેં તો લોગ કહેતે હૈ ના, યે તો મુનિયોં કો પઢના ચાહિયે. અરે યહાં તો જ્ઞાની કૈસા હોતા હૈ ઉસકી બાત બતા રહે. જો સ્વયં જ્ઞાની હૈ ઉનકો અજ્ઞાની કૈસા હોતા હૈ બતાને ક્યા ગરજ હૈ, ખ્યાલ મેં? લેકિન પૂરા પઢતે હી નહીં ઓર કુછ ભી અપના મંતવ્ય રખકર આગે ધમાધમ ચાલુ કરતે હૈ. તો યહાં તો ક્યા કહેતે હૈ, હવે શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે અપ્રતિબુદ્ધ કઈ રીતે ઓળખી શકાય, યાને યહ જીવ અજ્ઞાની હૈ યે હમ કિસ લક્ષણો કે દ્વારા ઉસકો હમ પહેચાન પાયેંગે.
યાને યે થર્મોમીટર લેકે અન્ય કો નહીં લગાના, અપને કો લગાકર મેં અપ્રતિબુદ્ધ હું કે નહીં યે પહેચાનના. ये पहली लाइन में यहाँ करेक्शन है, अहम एदम एदम अहम ह के ऊपर बिंदी करना.
किसके ऊपर?
एदम अहम. दूसरा शब्द जो है, दूसरा शब्द अहम एदम पहला शब्द हुआ, आगे वाला एदम अहम ह के ऊपर बिंदी देना. नए में है ना बिंदी?
हमारे में नहीं है.
पुराने गुजराती पुस्तकों में नहीं है, वहाँ देना. अभी हम एदम अहम,
एदम अहम,
હા એદમ અહમ.
ચલો
ચલો અભી હમ પઢેંગે. અહમેદમ એદમ અહમ અદમેદસ્વમ્યથિ પદમ
એદમ
અન્નમ જમ પરદૌવમ સચ્ચિત્તા ચિત્તમીસમ વા આસિ મમ પૂર્વમેદમ એદસ્ અહમ પિયાસી પૂવમ હિ હોહિ દિપુણો મમેદમ એદસ્ અહમ પિહોસ્સામિ એયંતુ અસભૂદમ આદવિ અપ્પમ કરેદિ સમ્મૂઢમ મુદત્થમ જાણંતો ન કરેદિ દૂતમ અસમ્મૂઢો. અહમેતદેતદહમ અહમેતસ્યાસ્મિ અસ્તિ મમ એતત્ અન્યદ યત્ પરદ્રવ્યમ સચિત્તા ચિત્તમીશ્રમ વા આસીન મમ પૂર્વમેતત એતસ્યા અહમપ્યાસમ પૂર્વમ ભવિષ્યતિ પુનર્મમ એતત નિતસ્યા અહમપ્પિ ભવિષ્યામિ એતત્વસદ્ભૂતમ આત્મવિકલ્પમ કરોતિ સમ્મૂઢ ભૂતાર્થમ જાનમ ન કરોતિ તૂતમ અસમ્મૂઢ. આ અને આહુ હું છું આનો અને છે માં सचित अगर चितवा हतु मारुआ पूर्वे हूँ पणानो हतो गत काल मा वरी आथशे मारुने आनो हूँ थईश भविष्यमा अयथार्थ आत्मविकल्प आओ जीव समूढ आचरे भूतार्थने जाने लग्यानिये विकल्प नहीं करे आने आहूँ छुआनो अने छे मारुआ छे अन्य को पर द्रव्य मिश्र सचित अगर चितवा हतु मारुआ पूर्वे हूँ पण आनो हतो गत काल मा वळी आथशे मारुने आनो हूँ थईश भविष्यमा अयथार्थ आत्मविकल्प आओ जीव समूढ आचरे भूतार्थने जाने लग्यानी हे विकल्प नहीं करे।
देखो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि ये जो अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी यानी जिसने अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया है यानी जिसने वस्तु का स्वरूप नहीं जाना है, ऐसे जीव के लक्षण क्या है, उसे हम किस तरह पहचाने। तो एक बात मैं आपको कथा सुना के आगे बढ़ूंगा। पहले जमाने की बात है, एक बहुत छोटा गाँव था, तो उस गाँव में एक पागल रहता था। तो घर उस गांव के सारे बच्चे सारे लोग सारे जितने कोई लड़कियां लड़के जो कुछ होवे सब लोग उसको ए पागल कह के उसको टोकते थे। तो उसको ये वो इतना दुखी होता था कि ये सब लोग मुझे पागल कहते हैं। तो उसने एक दिन ऐसे ठान ली कि ये गांव से हम भाग जाए। तो वो उस गांव से भागता 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 पूरा मतलब सुबह 5 बजे निकला हुआ, 12-1 बजे तक दौड़ता 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 गया। तो उसको इतनी बड़ी प्यास लगी कि उसने देखा एक खेत था। तो खेत में तो क्या होता है कि ये नहर होती है, पानी इधर से उधर जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो वहाँ पानी गिरता हुआ दिख रहा था उसे, वो जाके हाथ से पानी पीने लगा। और जब उसका पेट भर गया तो उसने हाथ से ऐसा ऐसा किया, बस बस बस। तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी तो उसने कहा क्या पागल है। तो बिल्कुल वो सचेत हो गया, अरे मैं इतना दूर भागते भागते आया और तुझको क्या मालूम मैं पागल हूँ। तो उसने कहा वो बताने की क्या गरज है, जिस तरह से तू बिहेव कर रहा है जिस तरह से तू रिएक्ट हो रहा है उस पर से ही पता लगता है कि तू पागल है। क्योंकि कोई पानी आपको पिलाता हो फिर आप कहो कि भाई हाँ रुक जाओ बस बस बस, वहां तो पानी गिरते ही जा रहा है गिरते ही जा रहा है गिरते जा रहा है, वो हाथ करेगा तो कौन रुकेगा वहां। ख्याल में वैसी यहां ये बात बता रहे हैं कि वह जीव जब तक ऐसा मानता रहेगा, कैसा वो बात बताएंगे हा? तो जब तक ऐसा मानता रहेगा तब तक वह अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी ही रहेगा। अब वो क्या कहते हैं,
एक मिनट, और एक करेक्शन है इसमें। अभी जो हमने गाथा प्राकृत पढ़ी थी,
हाँ जी बताइए,
वो तीसरा शब्द अदमेदस्य है, वह अहमेदस्य चाहिए।
अच्छा
अदमेदस्य लिखा है ना, तीसरा शब्द पहली लाइन, एकदम पहली लाइन अहमेदम एदम अहम, अगला वाला शब्द
अहमेदस्य
अहमेदस्य अहमेदस्य अहम एदस्य।
देखो अभी यहाँ हम गुजराती पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा, हूँ आ अने आ हूँ यानी मैं यह हूँ और यह मैं हूँ, हूँ छू आनो अने छे मारू आ, यह मैं इसका हूँ और ये मेरा है। तो इस तरह की जिसकी मान्यता है किसमें, जे अन्य को पर द्रव्य, यानी ऐसी परद्रव्यों में जिसकी मान्यता है। तो परद्रव्य कैसा कैसा है, तो कहते तीन प्रकार का है। एक तो कहते हैं सचित्त है, एक तो है अचित्त है, और तीसरा मिश्र है। अभी उन्होंने काव्य के हिसाब से पहले मिश्र को रखा, फिर सचित्त को और फिर अचित्त को। अब सचित्त यानी क्या, अचित्त यानी क्या और मिश्र यानी क्या, ये अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग बातें बताइए। सचित्त याने जैसा हम कहते हैं यह स्त्री और मैं कोई हम जुदे है नहीं, हम दोनों एक ही है, ऐसा कहते हैं, कहते हैं ना किसको, हाँ कौन सा गांव है, कौन सा गांव, हाँ हम अच्छा बोलते हैं एक गाना गाने के लिए कह रहे, तुम्हारी मान्यता ऐसा थोड़ी कह रहे हो, हाँ मैं भी भूल गया यार वर्डिंग याद नहीं आ रही, जाने जा। हाँ, बराबर देखो हमारे शिष्य भी ऐसे तैयार हो गए कि हम भूल जाए तो वो याद कर करके घर में जाके क्या हमको आके बता दे कि दो जिस्म मगर एक जान है हम, यानी दो शरीर है लेकिन हमारी एक आत्मा है। तो ये पर पदार्थों में मैं और यह मेरा, ऐसी जो मान्यता है, तो इसमें सचित्त यानी जो चेतना सहित है ऐसा, ये लड़का ही मैं हूं या मैं ही और लड़का, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये स्त्री जो है वह मैं हूं ऐसा नहीं मानते, ये मेरी अर्धांगना है ऐसा कहते हैं कि नहीं, हाँ ये तुम्हारा कौन सा वो अर्धनारी नटेश्वर, ये क्या है, यानी आधा स्त्री, स्त्री का शरीर आधा पुरुष का शरीर, ये दोनों मिलके एक, ऐसी मान्यता जब तक इस जीव की है तब तक वह अप्रतिबुद्ध है। ख्याल में आया, हाँ कि हमने तो ऐसा भी देखा है कि अपने बेटे का नाम अपने बाप का रखेगा, क्योंकि वो जब मर गया और ये पैदा हो गया तो वही यहां आया, ऐसा मानते कि नहीं। तो ये क्या कह रहे कि हूं आ अने आ हूं, मैं ये हूं और यही मैं हूं, और ये हूं छू आनो, मैं इसका हूं और वह मेरा है। ये इसी, ये मान्यता किसमें किसमें है, तो कहते सचित्त में है, और अचित्त यानी क्या, ये मुंबई अमची, ये बंबई मेरा, ग्राम नगर।
अचित्त ने कोई भी अजीव पदार्थ,
कोई बात नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो भी आने वाली बात है, देख लेना। हाँ ठीक है, या भाई यहाँ तो पहले ऐसा बताएंगे, ये इसमें आएगा अभी अन्वयार्थ में, और जब प्रवचन करेंगे उसमें अलग बात आएगी। अभी क्या बता रहे हैं, इनके हिसाब से यानी शास्त्र में अभी पहले शुरू में आया है, अचित्त यानी समझ लो कि ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, और दुकान में कोई चोरी हो गई तो मैं पूरा लुट गया, ऐसे ये जीव मानता है ना, और बहुत कमाए तो मैं बहुत खुश हो गया, इस तरह से ये अचित्त पदार्थों में मेरापन जिसका है, और ये मिश्र जो है, ये मिश्र का अर्थ यहाँ ऐसा लेना, ग्राम नगर आदि ये मेरे, क्योंकि उसमें चित्त और अचित्त और सचित्त दोनों है, इसलिए उसको मिश्र में लिया। अभी आगे क्या कहते हैं, हतु मारू आ पूर्वे, यानी ये पूर्व में मेरा था, ये जो घर दिख रहा है ना इसमें पहले मैं रहता था, ऐसा कोई महल होगा तो कहेगा मैं पहला रहता था। क्या कहते हैं, हतु मारू आ पूर्वे, यानी तीनों बातें में ये लगा लेना, सचित्त अचित्त और मिश्र में, यह पहले मेरा था अने हूँ आनो हतो गत काड़वा, यानी भूतकाल में यही ये मेरा था और मैं उसका था। अब आगे वड़ी आ थशे मारू, यानी ये भविष्य में मेरा होगा, અને આનો હું થઈશ ભવિષ્યમાં ઓર મેં ઇસકા હુંગા. યે આજકલ કે સારે ફિલ્મ સ્ટોરી મેં તો યહી બાત આતી હૈ કે અગલે ભવિષ્ય કે કાલ મેં વો ફિર વહી ઉસી કે યા પ્રેયસી હોતી હૈ વો ઉસકા પ્રિયકર હોતા હૈ વગેરે વગેરે. તો યહી બાત હૈ ના, વળી આ થશે મારું અને આનો હું થઈશ ભવિષ્યમાં. યાને યે વર્તમાન મેં, ભૂતકાલ મેં ઓર ભવિષ્ય મેં, ઇન પદાર્થો મેં મેં હું ઓર વહી મેં હું, યા યે મેરે થે ઓર ઉનમે મેં થા, ઇસ તરહ સે મેરા થા. ઇસ તરહ સે જીવ કે જબ તક વહ માન્યતા હૈ તબ તક વહ અજ્ઞાની રહેગા. અ યથાર્થ આત્મ વિકલ્પ આવો જીવ સમૂળ આચરે. યાને અપને આત્મા કે બારે મેં અયથાર્થ માન્યતા કે કારણ યહ જીવ મૂળતા સે આચરણ કરતા હૈ. ભૂતાર્થ ને જાને લ જ્ઞાની એ વિકલ્પ નહીં કરે. યાને ભૂતાર્થ યાને જો સત્યાર્થ હૈ, યાને જો હૈ વૈસા જો પદાર્થ કા સ્વરૂપ હૈ, યાને આત્મા કા એસા જો જ્ઞાની હૈ, જાના હુઆ એસે વસ્તુ કો જાના હુઆ જો આદમી જ્ઞાની હૈ, વો એસા વિકલ્પ નહીં કરતા કે યે પર પદાર્થ મેરે હૈ મેં ઉનકા હું વગેરા વગેરા. અબ ગાથાર્થ કો પઢતે હૈ. અન્યત યત પરદ્રવ્યમ જે પુરુષ પોતાથી અન્ય જે પરદ્રવ્ય સચિત્ત અચિત્ત મિશ્રમ વા સચિત્ત સ્ત્રી પુત્રાદિક અચિત્ત ધન ધાન્યાદિક અથવા મિશ્ર ગ્રામ નગર આદિક તેને એમ સમજે છે કે હું આ છું, અહમ એતત એતત અહમ આ દ્રવ્ય મુજ સ્વરૂપ છે. હમ સિર્ફ ગુજરાતી પડેંગે તો હું આ છું અને આ દ્રવ્ય મુજ સ્વરૂપ છે. અબ આગે કહેતે અહમ એતસ્ય અસ્મિ હું આનો છું, એતત મમ અસ્તિ આ મારું છે. યે વર્તમાન કાલ કી બાત બતાઈ. અભી કહેતે એતત એતત મમ પૂર્વમ આસિત આ મારું પૂર્વે હતું, યાને ભૂતકાલ મેં યહ મેરા થા. એતસ્ય અહમ અપી પૂર્વમ આસમ આનો હું પણ પૂર્વે હતો, યે મેરા થા ઓર ઇસકા મેં થા. ઇસ તરહ સે એતત મમ પુનઃ ભવિષ્યતિ આ મારું ભવિષ્યમાં થશે. અહમ અપી એતસ્ય ભવિષ્યામિ હું પણ આનો ભવિષ્યમાં થઈશ. એતત તુ અસત ભૂતમ આવો ઝૂઠો આત્મવિકલ્પમ આત્મવિકલ્પ કરોતી એટલે કરે છે. યાને વો અપને કો પુન પરપદાર્થ રૂપ માનતા હૈ, વો વર્તમાન મેં ભી માનતા હૈ, ભૂતકાલ મેં ભી મેં વૈસા હી થા ઓર ભવિષ્ય મેં ભી હોઉંગા. ઇસ તરહ સે ઇન પરપદાર્થો કે સાથ મેં યાને આત્મા હું એસા ખોટા વિકલ્પ જબ તક યહ જીવ કરેગા તબ તક વહ અજ્ઞાન યાને અપ્રતિબુદ્ધ રહેગા. તો આત્મવિકલ્પ કરે છે તે સમૂઢ મૂળ છે, મોહી છે, અજ્ઞાની છે તું. અને જે પુરુષ ભૂતાર્થમ પરમાર્થ પરમ વસ્તુ સ્વરૂપને જાનન એટલે જાણતો થકો, તમ એવો જૂઠો વિકલ્પ ન કરોતી નથી કરતો તે મૂળ નથી જ્ઞાની છે. એ બાત ખ્યાલ મેં આ ગઈ આપકે. તીન બાતો મેં ઉન્હોને એકત્વ બુદ્ધિ બતાઈ હૈ. એક સચિત્ત યાને સ્ત્રી પુત્ર, અચિત્ત યાને ધન ધાન્ય ઘર આદિ જો હૈ પૈસા, ઓર તીસરી બાત મિશ્ર યાને ગ્રામ નગર આદિ.
યે દોનો હુઆ ઇસમે એકત્વ ઓર મમત્વ, યહ મેં હું ઓર યે મેરે હૈ, દોનો બાતે યહાં લે લી ઉન્હોને વર્તમાન મેં દોનો લીએ, યહ મેં હું યા યહ મેં મેરે હૈ એસે દોનો લીએ, ઓર ભૂત ઓર ભવિષ્ય મેં યે મેરે થે ઓર યે મેરે હોંગે. કહેતે હૈ વો સાથ સાથ ભવ કે લીએ બુકિંગ કર દે ના પતિ પત્ની, તો યે યે મૂળ હૈ કહેતે. નહીં માલુમ આપકો, અભી નહીં કરેંગે.
યે તો મહારાષ્ટ્ર મેં તો એસી ખાસિયત હૈ કે કોઈ કોણ સા રહેતા હૈ વટ સાવિત્રી પૂર્ણિમા કુછ કોણ સા
વટ પૂર્ણિમા,
વટ પૂર્ણિમા કે દિન વો બડકે ઝાડ કે
વો ધાગા એસા લપેટતે હૈ,
ઘૂમતે ફિરતે
જન્મો જન્મી હાસપતિ મિલો.
હા ભલે વો દારૂ પીને આકે મારતા ભી હોગા ફિર ભી વો બોલેગે કે યહી મેરે કો પતિ મિલે.
इन दोनों ही संसार में रखना चाहते
कम से कम सात। और वहाँ तो ऐसी भूल भरी मान्यता है कि ये मनुष्य पर्याय के बाद अगले भव में भी मनुष्य ही हूँ, और वो भी जो स्त्री वो स्त्री रहे, हाँ यानी वो मिथ्या दृष्टि रहना चाहती है। कितना अच्छा है कि नहीं? हाँ, क्योंकि वो ऐसा सोचते कि हम लोग सब ऊपर जाएंगे तो यहाँ के लोग क्या करेंगे। हाँ? ये सारा पागल अप्रतिबुद्धपना है, ये बात बताना चाहते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, देखो आप कुछ बताना चाहते हैं? देखो अभी यहाँ टीका में अमृत चंद्राचार्य दृष्टांत से समझाते हैं। अभी ये दृष्टांत आपको पहले तो मैं पढ़ लूंगा, फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पढ़ते वक्त तो आपको लगेगा कि एक ही बात बार बार बता रहे हैं, तो हर बात अलग अलग है। क्या है देखो, जेम कोई पुरुष, पुरुष यानी कोई व्यक्ति, ईंधन अने अग्नि ने मड़ेला देखी। ईंधन यानी समझते हैं आप? हा? क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दिया? फ्यूल, फ्यूल ईंधन, और अग्नि यानी जो अग्नि है, फायर। हाँ चलो अभी हमारा अंग्रेजी सुधर जाएगी। फ्यूल एंड फायर। क्या देखो, ईंधन अने अग्नि ने मड़ेला देखी एवो झूठो विकल्प करे छे। अब ये सारे विकल्प कैसे, जो अयथार्थ है, गलत है, झूठे हैं। कौन सी दो बातें देखी? एक ईंधन यानी फ्यूल और एक अग्नि यानी फायर। हाँ अभी बार बार ये रिपीट नहीं करूंगा, यहाँ ईंधन कहने से तो आप समझ लेना। तो क्या कह रहे हैं, अग्नि छे ते ईंधन छे, एक पहली गलती हो गई। अने ईंधन छे ते अग्नि छे, अभी इसमें कौन सी नई बात बताई है, ये हम अपने दिमाग में प्रश्न उठेगा। तो कहते अग्नि नु ईंधन छे अने ईंधन नो अग्नि छे, अग्नि नु ईंधन पहला हतु। अभी ये जो है ना, ईंधन छे ते अग्नि छे हो गए ना, और अग्नि नु ईंधन छे अने ईंधन नो अग्नि छे, वर्तमान काल की बात बताई। अब अग्नि नु ईंधन पहला हतु अने ईंधन नो अग्नि पहला हतो, ये भूतकाल की बात हुई। तीसरी बात, अग्नि नु ईंधन भविष्य मा थशे अने ईंधन नो अग्नि भविष्य मा थशे, आवो ईंधन माज अग्नि नो विकल्प करे ते झूठो छे, तेनाथी अप्रतिबुद्ध कोई ओळखाय छे। अभी क्या कहते, देखो यहाँ ये समझा रहे हैं, अभी हम ईंधन यानी यहाँ जो चूल्हे में डालते ना, वो लकड़े लेंगे, उसको ईंधन कहेंगे हम। अब जो अग्नि जो होती है, वो अग्नि का स्पर्श कैसा है, गर्म उष्ण है, और लकड़ी का जो अभी लकड़ी बाजू में रखी है, ईंधन डालना है, अभी डाली नहीं है चूल्हे में, तो कैसा ठंडा होगा, मतलब गर्म तो नहीं होगा। तो दोनों का स्वभाव भिन्न है, ख्याल में है? जो लकड़ा है वह अग्नि नहीं है, और जो अग्नि है वह लकड़ा नहीं है। इतनी तो बात हमारे ख्याल में आ गई। अब क्या समझा रहे, फिर से पढ़ेंगे हम। अग्नि छे ते ईंधन छे, अभी उसने क्या गलती की, पहले से पढ़ूंगा मैं। जेम कोई पुरुष ईंधन अने अग्नि ने मड़ेला देखी ने, यानी वो दोनों एकत्र आए हैं, उसको देखकर क्या कल्पना करता है, तो अग्नि छे ते ईंधन छे, यानी जो अग्नि है वही ईंधन है, वहां वो ईंधन जल रहा है, तो ऐसी कल्पना करता है कि जो अग्नि और ईंधन दोनों एक ही है। वैसे हम क्या कल्पना करते हैं, ये जो शरीर है और मैं दोनों एक ही है, क्या ये जो शरीर है वह पुद्गल द्रव्य है, मैं जीव द्रव्य हूं, मेरे में जानने देखने की कैपेसिटी है, लेकिन इस पुद्गल द्रव्य में जानने का कोई भी सामर्थ्य नहीं है, मैं चेतन स्वरूप हूं और वह अचेतन जड़ स्वरूप है। अब आप कहेंगे कि पुद्गल यानी क्या, तो आप अभी के लिए इतना समझना, पुद्गल द्रव्य यानी जो जो हमारे पांचों ही इंद्रियों से ज्ञात होता है, जाना जाता है, वह पुद्गल द्रव्य है। और भी इससे बहुत स्थूल परिभाषा जाननी हो तो जो जो आंखों से दिखता है वो सारा पुद्गल है, ये पुद्गल द्रव्य कहेंगे हम। अब कह रहे हैं कि ये जो लकड़ा है वो दिखता है क्या आपको? तो ये पुद्गल द्रव्य है, तो इसमें ज्ञान है क्या? नहीं, नहीं। ख्याल में? वैसे ये जो आत्मा है उसमें ज्ञान है, तो वह आत्मा और शरीर, शरीर में दिखता है ना, तो ये दोनों भिन्न है, फिर भी हम दोनों को एक मानते हैं। तो उन्होंने उदाहरण कौन सा दिया? ईंधन और अग्नि, दोनों का स्वभाव जुदा है, स्वरूप जुदा है, फिर भी दोनों एक साथ है। तो वो ऐसी झूठी कल्पना करता है, कौन सी? सेकंड लाइन में बीच में इनटू ब्रैकेट इन्वर्टेड है, अग्नि छेते ईंधन छे, ईंधन छेते अग्नि छे, ऐसा वो खोटा विकल्प कर रहा है। अने अग्नि नु ईंधन छे, अने ईंधन नु अग्नि छे, यानी जो दोनों एक दूसरे के हैं ऐसा वो मानता है। अब इन अग्नि नु ईंधन पहला, अरे एक लाइन चली गई क्या? अग्नि नु ईंधन पहला हतु, यानी ये भूतकाल की बात ले रहे हैं, उसी तरह ईंधन नो अग्नि हतो, और अग्नि नु ईंधन भविष्य मा थशे, अने ईंधन नो अग्नि भविष्य मा थशे, आवो ईंधन माज अग्नि नो विकल्प करे, यानी वो ईंधन जुदा है और अग्नि जुदी है, ऐसा उसको ज्ञान ही नहीं हो रहा है, वो दोनों एक में है, ऐसा खोटा विकल्प करता है। तेनाती अप्रतिबुद्ध कोई ओळखाय छे, यानी कोई इस तरह वह अप्रतिबुद्ध है ऐसा जाना जाता है। तेवी रीते कोई आत्मा, अभी ये दृष्टांत के बाद यहाँ सिद्धांत पर घटा रहे कि कोई आत्मा परद्रव्य माज असत्यार्थ आत्म विकल्प, यानी आत्मानो विकल्प करे छे, यानी परद्रव्य में ही मैं हूँ ऐसा विकल्प करता है। कैसा विकल्प करता है? हूँ आ परद्रव्य छू, हूँ आ शरीर छू। इसके पहले हमने देखा था ना, तीन बातों में वो एकत्व बुद्धि करता है, नो कर्म यानी शरीर मन वाणी, वह नो कर्म, आठ कर्म को वहां द्रव्य कर्म कहा या जड़ कर्म कहा, और जो मोह राग द्वेष के परिणाम है उसको भाव कर्म है। तो इन स्वरूप मैं हूं और उस उन वह मेरे हैं, ऐसा जब तक वह मानता है तब तक वह मिथ्यात्वी है, वह अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध है, ऐसी बात हमने वहां देखी थी। तो यहां पर भी वही बातों को और एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं कि हूं आ परद्रव्य छू, आ परद्रव्य मुझ स्वरूप छे, यानी मैं यह शरीर हूं और शरीर ही मैं हूं, मुझ स्वरूप छे। मारू आ परद्रव्य छे, आ परद्रव्य नो हूं छू, यानी ये शरीर मेरा है और इस शरीर का मैं हूं। देखो हमने तो पहले देखा था, ये जो अभी हम जीव अजीव अधिकार देख रहे हैं, उस जीव अजीव अधिकार में अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि, यानी पर पदार्थ में मम मतलब अहम यानी मेरा है ऐसी, हाँ जी, अहम बुद्धि, यह मैं हूं और यह मेरा है, इस तरह से उसकी जो बुद्धि हो रही है, तो उसी की बात यहाँ पर ले रहे हैं। यहाँ पर समझा रहे हैं कि आ परद्रव्य छे, आ परद्रव्य नो हूं छू, मारू आ पेला हतु अने हूँ आनो पेला हतो, मारू आ भविष्य मा थशे अने हूँ आनो भविष्य मा थईश, आवा झूठा विकल्प थी अप्रतिबुद्ध ओळखाय छे। अभी तो हम यहाँ रुकते हैं, कल विशेष बात हम आगे करेंगे। जब तक घर जाते जाते क्या अपनी मान्यता ऐसी है क्या? ऐसा अपने से ही पूछना हो, दूसरे को मत पूछना। और नक्की करना कि हम प्रतिबुद्ध है या अप्रतिबुद्ध है। जावाणी के ज्ञान तय सूजे लो कालो, सोवाणी मस्तकर्ण सदा देत हो।